सिद्धैरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावतन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्ननम्ने गौरत्पिते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो। सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद अस्तोत्र सत्मद भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अपनी श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। पश्चात हमारे परम श्रद्धेय के शास्त्री महोदय जी का मैं विशेष अभिनंदन करता हूँ। विशेष करके ये ब्रज की विभूति है। विद्वान बहुत से लोग हो सकते हैं, भागवत के भी विद्वान बहुत से लोग हो सकते हैं, गीता के भी हो सकते हैं, किंतु भागवत के निर्भीक वक्ता उसके तात्पर्यों को अनुधावन कर और जनसाधारण में उसे व्यक्त करना ये साधारण बात नहीं है। कुछ दिन पहले मथुरा में कोई भागवत विचार विमर्श के संबंध में कोई इष्ट गोष्ठी हुई, मुझे भी उसमें निमंत्रण किया गया था। मैं अस्वस्थता बस का बम्बई चला गया, मैं उस सभा गोष्ठी में नहीं था, किंतु मैंने सुना। इष्ट गोष्ठी का कुछ विषय था कृष्ण का आविर्भाव स्थल जन्म स्थल कहाँ है, मथुरा है या गोकुल है। एक पद से मथुरा के जितने भी पंडित हैं और जगहों के हैं उन्होंने कहा मथुरा है, किंतु पंडित चूड़ामणि हमारे मनोहर पाल शास्त्री जी ने ये भी कंठों से हमारे आचार्य परंपरा की दातों को मान्यताओं को जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य ही नहीं भागवत के जितने बड़े बड़े टीकाकार हैं और मंत्रदर्शा ऋषि हैं सुखदेव गोस्वामी का जो विचार है निधि कंठ से केवल एक तरफ ये और एक तरफ मथुरा के जितनी विस्तृत मंडली थी, क्योंकि उन्होंने सिद्ध किया कि कृष्ण आविर्भाव यहाँ हो सकता है किंतु जन्म तो प्रकट ये यशोदा जी के गर्भ से गोकुल नहीं हुआ। ऐसे निर्भीक विद्वान ब्रज की विभूति को मैं अपना सादर अभिनंदन ज्ञापन करता हूँ। बड़े बड़े वक्ता लोग मथुरा में आते हैं भागवत के, बड़े बड़े विद्वान भी लोग आते हैं जहाँ पर के लाखों लोग जाते हैं, किंतु लाखों लोग सार को ग्रहण नहीं करते। ऊपर से उसकी कुछ मधुपुष्पित बातों को ही लेकर के बस उसी में रमण करते हैं, अनुभवी विद्वानों की बातों को ग्रहण करना साधारण जन समाज के लिए बहुत ज़रा कठिन। उसके बैकग्राउंड में उसकी पटभूमि का नहीं कुछ होना चाहिए। सदगुरु जब तक न रहें, वैष्णवों का संग जब तक न रहे, तो गीता और भागवत का तात्पर्य समझना बड़ा भारी कठिन। इसलिए इस विषय में अधिक मैं न जा करके अपने वक्तव्य कराऊंगा, इसलिए मैं इस विद्वान पुरुष का मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करता हूँ। विशेष करके यहाँ के सब समय पूर्णिमा के तिथियों अवसरों पर ये आते हैं, आप लोग इनके हृदय की भावों को समझने की चेष्टा करेंगे, साधारण विद्वान नहीं है। यदि ये ब्रज जब चले जाएंगे अप्रकट में इनकी अभाव की पूर्ति करना बड़ा भारी कठिन होगा। मैं तमथुरा में किसी को नहीं देख रहा, शब्द के लालित्य से भले ही लोगों का आकर्षण करे, किंतु जो उसका सार्वभौम सत्य है उसकी तह तक पहुँचने वाले विद्वान बहुत कम हैं। उनमें से मैं समझता हूँ कि ये यथार्थ योग्य और विद्वान है। इन लोगों का सानिध्य जब आप लोगों को प्राप्त है, मैं समझता हूँ कि आप लोगों का यह परम सौभाग्य की बात है। मेरे आदरणीय उपस्थित सज्जनों और मथुरावासी, मैं सबसे पहले एक बात यही कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों का चिर ऋणी हूँ। मैं यहाँ पर भाषण देने के लिए नहीं आया, न तो मैं विद्वान हूँ। हम लोग तो अकिंचन निष्किंचन चैतन्य महाप्रभु की धाराओं में केवल हरिनाम का ग्रहण करने के लिए, उनके अनुसार में कुछ राधा जी की महिमा, कृष्ण की महिमा समझने के लिए, ब्रज की रूखी सूखी माधुकरी रोटियों पर जीवन निर्वाह कर यहाँ रहने वाले आए। वैकुंठ में हम लोग नहीं रहना चाहते, हम लोग कहीं भी द्वारका मथुरा अयोध्या के नहीं रहे। ब्रज में जैसे तैसे लोगों की बातें सुनते हुए भी यहाँ की जूठी रोटी ऊपर निर्वाह करते हुए हम लोग यहाँ पर भजन कर सकें, और इस भजन में आप लोग हमारी सहायता करते हैं। योग्यता नहीं रहने पर भी इतना सम्मान आप लोग देते हैं कि मैं तो गदगद हो जाता हूँ। यथार्थ में आप लोग सज्जन आदमी हैं, इसलिए हमारे जैसे जिसमें कुछ भी गुण नहीं है तो भी इतना सम्मान देते हैं। आज कुछ गीता की इष्ट रोटी आप लोग शास्त्री जी के सुगंध में सुने हैं, बड़े बड़े अंतर्देशीय अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियाँ भी हुई हैं, आप लोग उसमें सम्मेलन में भाग लिए होंगे। गीता पर बहुत सी टीकाएँ हैं। आज विश्व की ऐसी कोई भाषा नहीं है, ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जहाँ पर कि गीता का संदेश न पहुँचा हो और वहाँ पर गीता का अनुवाद उस भाषा में न हुआ हो। गीता जिसके गान करने से ही प्राण हो जाता है। जगत में तरह तरह की समस्याएं हैं। आज से 5,000 वर्ष पहले जो समस्याएं समाज को निगल रही थी, करीब करीब वही समस्याएं आज भी वो खड़ी हैं मुंह बाए हुए। भौतिक बाद फिर रहा है, ये सर ही सर्वस्व है। विषयों का संग्रह करना ही हमारे जीवन का प्रधान कर्तव्य हो गया है। आत्मा की भूख मर चुकी है, भौतिक विषयों का सुख, इसकी भूख हमें खूब जोरों से लगी हुई है। आज हमारा भारतीय संस्कृति का जो मूल धरोहर तत्व विचार था, आज यानी कहाँ चला जा रहा है। सब लोग मानो उसे सो रहे हैं। सबसे गीता का पहले का ज्ञान कृष्ण कह रहे हैं, गीता अनादि शाश्वत। गीता एक ऐसा अनुपम संस्कृति का एक अमृत स्वरूप है जिसमें सर्वकालिक सर्वसामयिक सर्वदेशीय समस्त समस्याओं का निदान है। केवल वर्तमान काल का ही नहीं, न अतीत काल का, न भविष्य काल, अनादि अनंत काल से जितनी प्रकार के लिए कोई भी समस्या उठ सकती है उसका सरल सहज अत्यंत स्वाभाविक रूप में समाधान गीता में है। अर्जुन कोई बद्ध जीव नहीं थे, कृष्ण कोई मनुष्य या केवल आचार्य नहीं थे, इसीलिए गीता की महिमा में ही वो लिखा गया, सर्व उपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदन सुधीर भोक्ता पार्थो वत्स। समस्त जितने उपनिषद हैं, वेद हैं, उपनिषद मैंने यहाँ पर वेद ही धर रखिए, समस्त वेद और उपनिषद श्रुतियाँ जितनी हैं, वेद के अतिरिक्त पुराण को भी वेद से अलग मत रखेंगे। महाभारत इत्यादि पंचम वेद है, वेदों के अर्थ को पूर्ण करते हैं या वेदों से भी अधिक पुराने हैं, इसलिए ये पुराण शब्द है, वो वेदों से अलग नहीं। क्लिष्ट भाषा में वेद हैं, पुराण जरा सहज भाषा में, किंतु भाव वेदों से भी अधिक गंभीर है पुराणों का। तो ये सब मिलकर के गाय हैं। कृष्ण स्वयं इसके दोहन करने वाले गोप हैं। पार्थ जो हैं वो वत्स हैं, और सुक्तिजन जो हैं ये भोक्ता है, और गीता के उपदेश ये जो अमृत है ये दुग्ध स्वरूप है। कोई कोई समझ लेते हैं ये अर्जुन को मोह हो गया था, अर्जुन को कभी नहीं मोह किया। गुडा केशव इत्यादि जो शब्द गीता में हैं, इसके द्वारा ऐसा समझा जाता है कि अर्जुन मुक्त महापुरुष थे। केवल मुक्त ही नहीं, मुक्त से बहुत ऊपर कृष्ण के सखा थे। कृष्ण जब आते हैं तो अपने परिकरों के साथ में आते हैं, जैसे कृष्ण गोपियों इत्यादि के साथ में, ब्रजवासियों के साथ में आए, उनमें कोई भी बद्ध जीव नहीं थे या बद्ध कोई गोपियां नहीं थी। या तो नित्य सिद्धा कृष्ण की परिकर राधा जी की काय जीव हैं, या कृष्ण के काय जीव स्वरूप, अथवा साधन सिद्धा, ऐसे सब लोग थे कृष्ण के विदाओं। उसी प्रकार से अर्जुन मुक्त महापुरुष थे, किंतु उनको कुछ बछड़ा का काम करना पड़ा। जैसे गायों को पिन्हाने के लिए बछड़े की आवश्यकता होती है, किंतु वो केवल दूध बछड़े के लिए नहीं, विश्व के लिए था, और विश्व के लिए है और रहेगा। इसलिए अर्जुन बद्ध जीव नहीं है। योग माया के प्रभाव से कृष्ण की जितनी भी लीलाएं होती हैं तो आत्म माया के द्वारा करते हैं, इसलिए योग माया के प्रभाव से अर्जुन को कुछ मोह जैसा हुआ, जैसे यशोदा जी को या कृष्ण को स्वयं बालपन रस का जो आस्वादन इत्यादि करते हैं, ये मुग्धता उनकी और सर्वज्ञता दोनों साथ में होती है। उनकी जो मुग्धता है वो योग माया के प्रभाव से, योग माया मैंने अपनी माया आत्म माया है, वो किसी दूसरे की माया नहीं। और उनके साथ साथ में सर्वज्ञता भी होती है, जिस प्रकार से ऐश्वर्य और माधुर्य कृष्ण का दोनों का एक साथ में रहना आवश्यक है, उसी प्रकार से ये मुग्धता, अर्जुन की मुग्धता और उनकी वो मुक्त महापुरुष का दोनों साथ साथ में। यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसा दुख भी नहीं होता। किंतु एक बात मैं प्रसंगवश कह देना चाहता हूँ, गीता की तो इतनी महिमा है, गीता में सब कुछ है, किंतु गीता आपके दूध ही है। दूध को गर्म करके दही बनाया जाए और उस दही का मंथन यदि किया जाए, तो मंथन करने से मक्खन और उसको फिर गर्म कर दिया जाए तो मक्खन से भी कुछ अच्छा चीज़ें आ जाते हैं, तभी उपयोग आती हैं, फिर उसमें से घी निकलता है। ये घी स्थानीय श्रीमद्भागवत है। श्रीमद्भागवत को समझने के लिए गीता का यदि पटभूमिका न रहे तो कोटि जन्मों में भी हम श्रीमद्भागवत कभी नहीं समझ सकते। इसलिए श्रीमद्भागवत का भी आधार ये गीता है। हम लोगों के गौड़ीय वैष्णवों के आचार्य के अनुसार में दो चार बातें मैं कहूँगा, अधिक मैं नहीं निवेदन करूँगा। विद्वत समाज हैं और ये पंडित जी भी हैं, आप लोग उसको कहेंगे। गीता में करीब करीब 4-5 उपदेश दिए गए हैं, 5 प्रकार के उपदेश। एक जिसको जनरल कहते हैं साधारण उपदेश, दूसरा गुह्य उपदेश, तीसरा गुह्यतर उपदेश, चौथा गुह्यतम उपदेश, और पांचवा है सर्व गुह्यतम परमम वचः। ये 5 प्रकार के उपदेश पाए जाते हैं। मानो अर्जुन को मोह हो गया अपने कुटुंबों को, बंधु बांधवों को, भाइयों को, ससुर को, या किसी को मारेंगे नहीं, धनुष बाण लेकर के रख दिया, मोह हो गया। इस मोह को ही उन्होंने पांडित्य समझा, कुछ समझ न सके, तीन कर्तव्य विमूढ़ हो गए। हम लोग भी अपने जीवन काल में ऐसे ही विषय आते हैं, समस्याएं आती हैं, तीन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। उस समय में यदि ऐसा कोई योग्य गुरु हो जिसके चरणों में सर्वस्व समर्पण कर सकें और जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा, ऐसा यदि भाव हो और गुरु भी कैसा हो, तब ब्रह्मनिष्ठ पर ब्रह्मनिष्ठ और संसार से आसक्ति रहित, जिसका श्रीमद्भागवत में लक्षण दिया गया है, गीता में भी बतलाया गया है, ऐसा यदि गुरु हो और उसके चरणों में सर्वस्व अनकंडीशनली बिना किसी शर्त के हम अपने को अर्पण कर सकें, तो गुरु उसको कुछ बतला सकता है। अर्जुन ने कृष्ण के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण करके कहा, आप जो कुछ कहेंगे कैसे मैं आपके बचनों को मानूंगा, आप कैसा कहेंगे वैसा हम करूँगा, मैं सोच नहीं पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए या नहीं। यह उनका मोह था। कृष्ण ने यहीं से आरंभ किया, अशोच्यान अन्न सोच स्तन प्रज्ञावादान से भाषते गतासु न गतासु नान सोच। अरे मूर्ख की तरह से होकर के और पंडितों जैसा बोलता है, अरे ये चले गए या चले जाएंगे उनके लिए तुमको ये कैसे अनार्य जुस्तम अनार्य उचित, तो बुद्धिमानों के लिए ये शोभित नहीं है, ऐसे के लिए तुम मोहित हो रहे हो। जो नहीं जाएंगे जो चले जाएंगे, जात से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी अवसंभावी है, इसके लिए बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करते, इसलिए तुमको शोक नहीं करना चाहिए। बांसात जीर्णानी जथा विहाय इत्यादि श्लोक बोले, नैनं छिदन्ति शास्त्राणि नैनं दहति। दो प्रकार की वस्तुएं हैं, इसलिए साधारण रूप में आत्मा और अनात्म तत्व का विवेक उन्होंने प्रस्तुत किया, जो सबके लिए पृष्ठभूमि में सबसे पहले ये गीता में जरूरत है। आत्मा क्या है अनात्मा क्या है इसका यदि ज्ञान नहीं होगा तो वो मोह होने के मोहित होने के लिए बाध्य है, माया अवस्थ हो जाएगा। इसलिए दो प्रकार की चीज़ें हैं, जितनी भी दृश्यमान जिसको हम लोग देख रहे हैं ये सब प्रकृति से उत्पन्न हुआ, ये मायामय वस्तु है जो कुछ हम देख रहे हैं, ये अचेतन है प्रभु की लीला है, विलास है, किंतु है अचेतन, जिसमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति नहीं होती, जिसमें स्वतंत्र सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, उसको कहते हैं अचेतन। यह शरीर सब समय मरा हुआ है, इसका जन्म है मरण भी, और इसके अंदर में जो आत्मा है वो अजर अमर है, ये कपड़े जैसा बदलने वाला है, इसमें सुख दुख की अनुभूति नहीं है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी नहीं है, कर्तृत्व भी नहीं है, किंतु हम इसी को सब कुछ मान बैठे हैं। इस शरीर के मरने से हम मरेंगे और शरीर के जीवित रहने से जीवित रहेंगे, आत्मा इसके अतिरिक्त भी रह सकती है। आत्मा माने होता है मैं, ये मैं हूं कौन, ममई वांसो जीवलो के जीव भूत सना, ये भगवान का अंश है। इसके संबंध में बहुत सी बातें हैं, उस दार्शनिक रूप में नहीं जाऊंगा, किंतु ये समझिए कि हम उनके नित्य दास हैं, अंश माने यहाँ दासत्व का था, भगवान का कोई टुकड़ा नहीं होता है, तो भगवान तो सब समय परिपूर्ण अखंड तत्व हैं, तब उनकी शक्ति के द्वारा ये सब मंत्र की भांति जैसे किसी चीज़ से प्रकट हो जाती है। हम लोगों के संप्रदाय में इसको परिणाम बताया गया है, शक्ति परिणाम, वल्लभाचार्य ने भी इसी रूप में कुछ किया। सब वैष्णव के विचार करीब करीब थोड़े से वैशिष्ट हैं, कहीं भी वैष्णव आचार्यों में कोई अंतर नहीं, इसलिए समस्त जीव कोई मानो और न मानो जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, प्रत्येक जीव उनको भूल करके इस जगत में शरीर में मैं की बुद्धि आत्मबुद्धि आई है, इसलिए सब मोह का कारण है। यदि कोई सुख और शांति चाहता है, यदि कोई भागवत और गीता में प्रवेश करना चाहता है, अपनी संस्कृति में प्रवेश करना चाहता है, इस लोक में परलोक में सुखी होना चाहता है, तो उसको समझना चाहिए ये अनात्मा है, इसके अंदर में आत्मा है। पशु पक्षी कीट पतंग तीन गुलमलता सबके अंदर में आत्मा है। उसका जो दर्शन करता है वही यथार्थ पंडित है। शुकर में भी वही आत्मा, गाय में भी वही आत्मा, वही मैंने वैसे ही आत्मा समझ आती है, सर्वत्र वही आत्मा, वही आत्मा। इसको जो दर्शन करता है संभाव से और प्रभु का अधिष्ठान ज्ञान करके सब जीवों को आदर देता है, वो यथार्थ पंडित है। इसलिए गीता के द्वितीय अध्याय में आत्मा और अनात्म तत्व का भी विवेचन किया गया है। ये साधारण विचार है। इसलिए सुख दुख समय लाभा लाभा जय जय, जीवन मरण हानि लाभ, जस अपजस सब विधि हार, ऐसा समझ करके इसको परमात्मिक न समझ करके इसको केवल ये जगत में रहने के लिए जहाँ तक हो सके इसको समझ करके चलना चाहिए। ये साधारण उपनिषद का देश है। मरना जरूर, आज मरेंगे कल जरूर मरेंगे, इसलिए अपने कर्तव्य पर निश्चित रूप में ठीक रहेंगे। इसलिए कर्मण्य आवादित कर्मण्य वाधिकार से माँ फलेशु कदाचन, फल में तेरा अधिकार नहीं है, कर्म में तुम्हारा अधिकार है। इसलिए तुम्हारे जो कर्म मने क्या शास्त्र विहित जभी है तो कर्म है, मनमाने ढंग से चोरी ये कर्म नहीं है, ये सब पाप है। इसलिए शास्त्र विहित यदि कर्म है तब तो ठीक है, ऐसे कर्मों का मैं तुम्हारा अधिकार है। कर्मण्य वाधिकार से माँ फलेशु कदाचन, जो एक ये श्लोक गीता का इसका अनुसरण कर लेगा बस उसका जीवन धन्य हो जाएगा, वह सुखी और शांति हो जाएगा। तो अभी कुछ बाकी रहेगा, उसका जीवन इसी से सफल तो नहीं हो जाएगा, सर्वस्व तो नहीं मिल जाएगा, किंतु हाँ प्लेटफॉर्म बन जाएगा। इसलिए कर्म में हम सबका अधिकार है, शास्त्र भी कर्मों में अधिकार है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म के नियमों को पालन करते हुए हम फल की आकांक्षा को छोड़ करके, कर्म फलों की आकांक्षा छोड़ करके निष्काम रूप में हम जब कार्य करते हैं तो ये मुक्ति का द्वार स्वरूप हो जाता है। स्थित प्रदर्श्य का भाषा समाधि सब इत्यादि जहाँ पर वर्णन पूछा अर्जुन ने, स्थिति जिनकी बुद्धि स्थिर है वो कौन है, तो इसमें उन्होंने चार पांच प्रश्न किए। इसका जो उत्तर है वही ब्रह्म स्थिति है और इसकी अंतिम अवस्था है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षति समस्त सर्वेश भूतेषु मत भक्तिम लभते। ये बतलाया जिसको ब्रह्मभूत, ब्रह्मभूत की स्थिति क्या है वो द्वितीय अध्याय में बतलाया गया, उसी को मैं बता रहा था। गुह्य हानि लाभ कुछ भी हो उसमें मोहित नहीं, दुखेशु अनुदिग्न सुखेशु विगत स्त्रिया, सुख में आकांक्षा उसकी कामना और दुख में महा उद्विग्न हो गया, ऐसा नहीं संभव है। हमारे श्रीमद्भागवत की गीता में भी ऐसा बतलाया गया, श्रीमद्भागवत में ऐसा बतलाया गया, यदि दुख अपने आप बिना बुलाया जाता है तो सुख भी आ जाएगा। इसलिए न तत्प्रयास वो कर्तव्य जो था आयु बह पर, ये तो आयु बह खय करना है, वो अपने आप होगा भाई। इसलिए केवल आप भगवत भक्ति की आत्मज्ञान के लिए चेष्टा करो, भगवत भक्ति के लिए चेष्टा करो। ये गीता का साधारण रूप में गुह्य उपदेश है। यदि तत्व को हम जाने कि ये सुख और दुख आएगा, शरीर आज न कल जाएगा, जब जन्म लिया है तो मरेगा ही, रोग भी जरूर होंगे ये शरीर के लिए, शरीर के जाने से ही हम मर नहीं जाते आत्मा नहीं, ये तो आत्मा के साथ में शरीर का मिलन जन्म और विछुड़न को मृत्यु हम लोग कह देते हैं, और इसी में शोक में हम मूल्यमान होकर के अपने कर्म से पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए ऐसा ना करके इन चीज़ों को समझ करके ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा सब समय प्रसन्न रहता है, न सोचती न कांक्षती, न शोक करता है और न किसी वस्तु की आकांक्षा करता है। संसार में जितनी भी बुराइयों की जड़ और अशांति की जड़ ये कामना है। यदि हृदय में कोई कामना ही नहीं संसार की वस्तुओं के प्रति तो न तो उसे क्रोध होगा, न उसे कोई दुख होगा, न कभी उसका चित्त उद्विग्न होगा। इसलिए भक्ति के लिए भी इस स्थिति की जरूरत है, ज्ञान के लिए भी स्थिति की जरूरत है, जगत में सुख और शांति के लिए भी इस चीज़ की आवश्यकता है। न शोषित न कांक्षति समस्त सर्वभूतेषु समस्त प्राणियों में सम रहता है। और ऐसा व्यक्ति अंत में पराप भक्ति अर्थात प्रेमा भक्ति लाभ करता है भगवान की चरणों में, जिससे भगवान भी उसके द्वारा बसीभूत हो जाता है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध इत्यादि में विशेष रूप से वर्णन किया गया है। हम इसके ऊपर में केवल एक सूक्ष्म विहंगम दृष्टि से इस पर विचार करेंगे। तीसरा है गुह्य सर, पहला दूसरा बताया ब्रह्म ज्ञान, अब कुछ परमात्म ज्ञान में हम आएंगे। यद्यपि ब्रह्म परमात्मा भगवान एक ही वस्तु है, किंतु तीन प्लेटफॉर्मों से हम उसको देखते हैं, विभिन्न प्राधिकारी उनको देखते हैं, एक ज्ञानी, एक योगी, एक भक्त। ज्ञानी उनको परमात्मा ब्रह्म के रूप में देखता है, योगी लोग उनको परमात्मा के रूप में दर्शन करते हैं, ईश्वर के रूप में, और भक्त लोग उन्हीं को भगवान के रूप में दर्शन करते हैं। यदि और इसे कुछ तीसरी सीढ़ी पर यदि चढ़ना है, कहते हैं कि भाई ऐसा कोई भी जीव नहीं जिसके अंदर में साक्षी के रूप में परमात्मा विराजमान न हो, वो विष्णु इसीलिए है कि व्यापक हैं, सब जगह सबके वो पोषता हैं, सबका वो पोषण करने वाले हैं, अंतर्यामी हैं सबके, वो नियामक है। इसलिए यज्ञार्थात कर्मणो लोकमनत्तर कर्मण बंदना, केवल सुख दुख को समान कर लेने से नहीं चलेगा, केवल ब्राह्मी स्थिति होने से ही काम नहीं चलेगा, प्रभु का कुछ ध्यान भी होना चाहिए, प्रभु के साथ में कोई संबंध भी होना चाहिए। तो ये कैसे होगा, इसलिए वो बतला रहे हैं निष्काम भी होना होगा, यदि नहीं है तो भी कोई बात नहीं। यज्ञार्थात कर्मणो लोकय मनत्र कर्म मंदना तदर्थम कर्म कंते मुक्त संग समाचरण। एक इसी श्लोक को भी हम लोग यदि अनुसरण करें तो भी हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। कहते हैं यज्ञार्थात कर्म, भगवान की प्रीति के लिए हम झाड़ू भी देते हैं मंदिर में, ये भी यज्ञ है। यज्ञ ऐसा कोई ये नहीं है कि अभी मैं ओम स्वाहा ओम सांग विष्णु स्वाहा इत्यादि चाहिए, यही नहीं, बल्कि अपने को ही भगवान के चरणों में संपूर्ण रूप से अर्पित कर देना। गोपाल मंत्र इत्यादि में स्वाहा शब्द का तात्पर्य इसी रूप में आया है, और यही यथार्थ यज्ञ है। यज्ञार्थात कर्मणो, जो भी कुछ करो भगवान के लिए करो, भगवान की प्रति के लिए करो। यज्ञार्थात कर्मणो लोकमनत्त कर्म बंधन, और जितने भी कर्म हैं इसके अतिरिक्त वो कर्म बंधन है, इसलिए तत्थम कर्म कुरु, उनके लिए ही कर्म करो, इसलिए वहां पर बतलाया गया। और भी बतलाया गया अनासक्त होकर के करो, आसक्ति के सहित नहीं इस जगत के कर्म, और सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित करो। पत्रम पत्वम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तोपसृतम स्नामी प्रजतात्मन। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धापूर्वक प्रजतात्मन भगवान की तुति के लिए यत्न करता है अंतरि हृदय से, ऐसे नहीं दे दिया लिया तो लिया नहीं तो नहीं लिया, ऐसे नहीं, यत्न करता है अंतर हृदय से, तो कहते हैं पत्रम पुष्पम, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, धन नहीं है कोई बात नहीं, मन तो है हृदय तो है, हृदय के साथ में एक तुलसी का कोमल सा पत्ता दे दो। पुष्पम कोई भी पुष्प उनको दे दो, फलम कोई भी फल हो, अपने कर्मों का फल हो, ऐसा ये फल हो, बाजार से अपने लिए बाजार से फल मांग खरीदने जाओ, प्रभु की प्रसन्नता के लिए प्रभु के लिए, ये विश्व सम ईशा अवश्यमितम सर्वम जब किंत जगत कहते हैं, ये सब प्रभु का है, प्रसाद के रूप में है, भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में जीवन निर्वाह करने के लिए जितने जरूरत बस उतना ही ग्रहण करेंगे, और नहीं तो भाई मरण होगा, बड़ी अशांति हो जाएगी, हम उसके मालिक नहीं है ऐसा समझो। ये यज्ञ का यही तात्पर्य, यज्ञ अर्थात कर्मणो लोक है मनत कर्म बंधन, नहीं तो कर्म का बंधन हो जाएगा। इसलिए जब करोसी जदश्नासी जज्जुहोसी जब तपस्यसी, सब कुछ कृष्ण के चरणों में अर्पण कर, किसको अर्पण करें ये समझ लीजिए। कृष्ण गीता में कहते हैं, श्रीमद् भागवत में कहते हैं, ऐसा कोई पुराण नहीं है जिसमें कि नहीं कहा गया है, मत्तः परतरम किंचित नास्ति धनंजय, हे अर्जुन हमसे बढ़कर के कोई परतत्व नहीं है जगत में, जितने भी अवतार हैं, जितनी भी विभूतियाँ हैं, ये सब कृष्ण की विभूतियाँ, कृष्ण के अवतार, कृष्ण के प्रकाश, कृष्ण के वैभव, ये सब है। मूल रूप में भगवान कृष्ण हैं, और उसमें भगवत्ता नहीं, सबसे अधिक भगवत्ता ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर राधा चिंताराधा रमण गोपीनाथ मदन मोहन श्याम सुंदर में थोड़ा सा वैशिष्ट है। मथुरेश कृष्ण, द्वारकेश कृष्ण और ब्रजेश कृष्ण, किंतु वहाँ अभी हम लोगों का अभी उसमें हम नहीं जाएंगे, हम साधारण रूप में गीता के ऊपर ही हम चल रहे हैं अभी। इसलिए यहाँ कृष्ण को ही परतत्व समझें, कृष्ण से बढ़कर के कोई तत्व नहीं है, कृष्ण के समान कोई दयालु ही नहीं है। श्रीमद्भागवत इत्यादि में वर्णन किया गया है, पूतना उनको कालकूट अपने स्तनों में लगा करके गई मारने के लिए, और उसको मुक्ति ही नहीं, धातु उचित गति दे दी, गोलोक बैकुंठ में उसकी गति दे दी। ऐसा दयालु कौन होगा जिसे सब सब भजन करे, और विशेष आपके ब्रज में कहीं भी, ब्रजमंडल में कहीं भी जन्म हो और कृष्ण को छोड़ करके किसका कौन भजन करेगा। इसलिए कहते हैं जत करोसी जदश्नासी जग्युहोसी जग ददाती जत तपस्त कौन थे तत् मदार्पण अर्पण कर दो। किंतु यहाँ पर एक बात बतलाना चाहूँगा, इन दोनों श्लोकों में कुछ वैशिष्ट्य है। कृष्ण को अर्पण करना माने अपनी कोई चीज कृष्ण को देना, और जहाँ अपनी कुछ है ही नहीं है, शरीर भी नहीं है, मैं भी अपना नहीं हूँ, मैं सब कृष्ण का, इसलिए सर्वधर्मान प्रत्यज माम एकम शरणम ब्रज अहम स्वाम सर्व पाप को मुक्त स्वामी जो वहाँ जो कहा गया है। भाई पहले अपने को ही अर्पण कर दो, इति कुल सार किताब विष्णु भक्ति के नवलक्षण, पहले अपने को अर्पण कर दो, उनका हो जाओ, फिर तुम्हारा सर्वस्व उनका हो जाएगा, फिर अर्पण करने की जरूरत नहीं होगी। अर्पण करने में कुछ घटिया किस्म की भक्ति होती है, सगुणोपासना हो जाती है, सगुण भक्ति हो जाती है, वो निर्गुणा भक्ति नहीं है। निर्गुणा भक्ति है अपने को भगवान का बना लो और तुम्हारा सर्वस्व भगवान का हो जाए, उस समय में जप करो उसी जदर्शनासी। इसीलिए इन सब लोगों को उपदेशों को महाप्रभु जी ने कहा कि हो बाध्या के कहा, और आगे थोड़ा सा चलिए, अब हम लोग चलते हैं गुह्य तम गीता के सातवें अध्याय में जो बतलाया गया उसको हमने बताया आपके साथ, वो है गुह्यतम। गुह्यतम में नौवां अध्याय जो है उसमें भगवत तत्व का विश्लेषण किया गया, और उस भगवान के प्रति हम उनको कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी प्रसन्नता से कैसे हम सुखी और शांति हो सकते हैं, ये सब चीज़ों का उसने विश्लेषण किया है। उसमें कर्म के लिए बतलाया गया है, जितना भी अच्छा कर्म करो करोगे ते तंग भुक्वा स्वर्गलोकम विशालम खीने पुण्य मतलोकम विशंति, भाई वहाँ से गिरना पड़ेगा स्वर्गलोक से, जितने भी अच्छे कर्म करोगे भाई इसमें सुख और शांति नहीं है, इसलिए इधर मत जाओ। उन्होंने कहा जो प्रकृति की उपासना करता है प्रकृति में जाता है, जो पूर्वजों की देवताओं की उपासना करते हैं वो देवलोक में जाते हैं, जो ऋषियों की उपासना करते हैं ऋषि लोक में, जो भूतों की पूजा करते हैं भूतों के लोक को प्राप्त होते हैं, किंतु माँ को उपेत्य फिर मुझे पाप प्राप्त होकर के फिर वहाँ से उसका गिरना नहीं हो सकता, वहाँ से जो कृष्ण का भजन करेगा वो हमें पाएगा और फिर वहाँ से कभी भी वो नीचे नहीं कर सकता। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए, क्यों कि ये बतला रहे हैं तपस्वी को जोगी कर्मी भस्त कभी को जोगी ज्ञानों को भी मतोधिकर तस्मात जोगी भवाति में जोगी नंग सर्वेशां मदगते न अंतरात्मना सद्भावान भजते जो मंग समय युक्त समो मता। कर्मियों से जोगी बड़े हैं, ज्ञानियों से भी जोगी बड़े हैं, तब कर्म योग भी है, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग ये तीन मार्ग नहीं है, एक ही है। केवल रास्ता पहला रास्ता का पहला भाग, दूसरा भाग तीसरा भाग, जैसे एक कच्चा आम, एक अधपका आम और एक पूरा पका हुआ आम, उसी तरह से कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग कोई अलग तीन योग नहीं है। उसके पहले भाग कर्म योग, दूसरे को ज्ञान योग, तीसरे को भक्ति योग कहते हैं। तो इसमें हम अभी कौन सा श्लोक तपस्वी को जोगी, तप योगी की अपेक्षा कर्म योगी श्रेष्ठ ज्ञान योगी सभी श्रेष्ठ योगी है। और योगियों में योगी नाम सर्वेशां मदगतेन अंतरात्मना, अंतर मन से हमारे प्रति योग कर दे। जो कर्द मन जैसे एक और एक दो होता है, वैसे प्रभु की सेवा में तुम मिलो, उनकी सेवा करो। मदगतेन अंतरात्मना, अंतर आत्मा से इससे बढ़कर के कोई योगी नहीं है। ये सभी बतलाया हम लोग भी, यदि अभी जो गुह्य गुह्य तरीके आदि बतलाया है, अपने मन का संयोग किसी प्रकार से भगवान के चरणों में कर दें। और जैसे कि गीता के 9 अध्याय के मन मन अभाव मद भक्त इत्यादि का यदि कर दें तो हम लोगों का जीवन चरम रूप में सफल हो जाएगा। यहाँ तक लोग बहुत कम पहुँच पाते हैं। अर्जुन ने ही सब चीज को सुना। 11-12 अध्याय में जिसका भी आप लोगों ने पाठ किया, साधारण नहीं है। गीता का बल्कि सार इसी में है। गीता का एक पेदी है और एक ढक्कन है। एक से लेकर के 6 तक पेदी है और उधर का ऊपर वाला जो 6 अध्याय है वो ऊपर का ढक्कन है, और बीच का जो भाग है 9 से लेकर के ये 12 इत्यादि, ये गीता का सर्वोत्तम उद्देश्य इसी के अंदर में रत्न की भांति ये है। गीता एक संपूर्ण सोने के थाल या वक्त के समान, और भीतर में ये सब उपदेश कहा न गया कि क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसा, मैं ब्रह्म हूं, मैं निराकार हूँ, भगवान निराकार हैं, हम भी निराकार हैं। जितने गीता यहाँ पर भागवत के बड़े बड़े वक्ता लोग आए हैं, बहुत दुख होता है, लाखों जनता तो जाती है, इन चीजों को समझ नहीं पाती। ऊपर से 2-4 रंगीले और पुष्पित वाक्य कह करके भगवान को निराकार बना करके उड़ा देते हैं और जीव को भी, और अंत में कहते हैं कि ऐसा हो गया, ये अंगुष्ठ और ये अंगुली दोनों मिल गई और एक हो गया। क्या एक हो गया? पत्थर हो गया। ये क्या हो गया? निराकार, निर्विशेष, निरंजन, निष्क्रिय, अनादि, अनंत, भगवान ऐसे ही हैं। वो तो रसमय हैं, इसलिए वहां पर कह रहे हैं कि अर्जुन ने ये सब सुना। क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जो अव्यक्त भगवान को निराकार मानते हैं, जीव को भी निराकार मानते हैं, और अंत में दोनों का मिलन करके एक वस्तु बना देते हैं, वो भी उसमें कोई चेतनता, उसमें सुख, रस, विचार, क्रिया कुछ भी नहीं है। ये तो भगवान को ठूठा बना दिया, निर्विशेष बना दिया। इसलिए कहते हैं कि भाई उससे थोड़ी सी चित्त शुद्धि होगी, और यदि साधुओं का संग हो जाएगा तो लभते पराम, पराभक्ति लाभ हो सकता है, किंतु जरूरी नहीं है जो होगा ही। साधु संग के ऊपर में सब कुछ है। साधु संग सर्वशास्त्र का है, बिना साधु संग के नहीं हो सकता है। और जब तक भगवान की कृपा नहीं हो तब तक ऐसे रसिक तत्पज्ञ वैष्णवों का संग नहीं होगा, तब तक गीता का ये सब समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं इसमें केवल आसक्त ही है, आप लोग भगवान को कभी निराकार मत समझेंगे। अर्जुन को उपदेश देने वाले कहते हैं कि हम अपने को अंगुली दिखला के कहते हैं, वो है ना, वो भी कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं, माम एव जे प्रपद्यन्ते। माम, माम माने किसको? यदि वो अव्यक्त है तो माम किसको कह रहे हैं? मुझे। मैं कौन हूँ? कृष्ण हूँ। अंगुली दिखला करके जहाँ पर करें कैसे हैं, श्याम सुंदर हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं निराकार। गीता निराकार है कि ना, ऐसा नहीं, गीता का उपदेश नहीं होगी। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं अंत में, जब अर्जुन ने कहा मैं सब आपके उपदेश सुने, अब कृपया हमको इनमें से मुझे क्या करना चाहिए, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, थोड़ी सी आप कृपा करके मुझे बताइए मेरे लिए क्या करना है। भगवान द्रवित हो गए, द्रवित होकर के कहें देखो तुम हमारे बड़े प्रिय हो, और मैं तुमसे सर्वगुह्यतमम सुन में परमम बचा, गुह्यतर हो गया, गुह्यतम भी हो गया, अब यहाँ पर सर्वगुह्यतमम परमम बचा, अब इनको बतला रहे हैं। कहाँ बतला रहे हैं? 65 श्लोक में, गीता के 18वें 64 या 65वां श्लोक होगा, उसमें बतला रहे हैं, अंतिम में बतला रहे हैं, मन मना भवो, मन मना भवो, मद भक्तो, मद यागी, मांग नमस्कुरु, माम एव इष्यसि। क्या सप्तम प्रिय सुने, अर्थात मन मना भव, ऐसा करो चित्त हमारे में लगाओ। कैसे चित्त लगाओ? कृष्ण कहते हैं उद्धव जी को, भेज रहे हैं ब्रज में, गीता सूत्र है, विस्तृत ग्रंथ नहीं है, व्याख्यान ग्रंथ नहीं है, क्योंकि समस्त उपदेशों तो उपदेशों और वेदों का भारतीय बांग्यमय का ये सूत्र है। जैसे वेदांत सूत्र है इसको कम मत समझेंगे, इसलिए गीता उपनिषद इसको कहा गया। तो उसमें कहते हैं मन मना भव, अर्जुन जैसे सचमुच से तू हमारा प्यारा है, मैं तुमको उपदेश देता हूँ, मन मना भव, अपने मन को हमारे में दे दो, हमारे में लगा दो, हमारे हो जाओ। कैसे? इसी के लिए श्रीमद् भागवत में जाना पड़ेगा इसका उदाहरण खोजने के लिए। उद्धव जी को कृष्ण भेज रहे हैं ब्रज में, ओ ब्रज में जाओ, हमारे माता पिता बड़े दुखी हैं हमारे लिए, विशेष करके ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे दैत्य कई भगा, मन मनस्का मत प्राणा मदर्थ तैक्त देह का मामेव दैतम प्रेष्टम आत्मानम मनसा गता। उद्धव ब्रज में जाओ, मन मना भवो, ये जो है इसकी व्याख्या बतला रहे हैं। ता मन मनस्का, वो अपने मन को दे दिया, मनसा गता मन को भी हमारे अंदर में दे दिया है। कैसे दिया है देखेंगे इसको भ्रमर गीता में। गोपियां जब कृष्ण का अन्वेषण कर रही हैं 35वें अध्याय में देखिए, जो श्रीमद् भागवत का वो प्राण है, पंच प्राणों में मुख्य प्राण है वो, गोपियां कैसे हो गई हैं, शरीर की शुद्ध बुद्धि नहीं है, कैसी हो गई है, मैं एक छोटे से उदाहरण के द्वारा आपको समझाने की चेष्टा करूंगा, इसके बाद अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। राधा जी एक भ्रमर को देखा, अब भ्रमर को देख करके कहती हैं, सोच रहे हैं ये कृष्ण का कोई काले का काला दूत आया, सचमुच में अंतर बाहर काला है, अपने गोठों पर ये कुमकुम कहां से लगा करके आया, और अधिक मान हो गया। उद्धव जी बहुत दूर से खड़े हैं देख रहे हैं, नंद बाबा का ही प्रेम देख करके विस्मित हो सोचा गया था पहले, जो कृष्ण को छोड़ करके मैं कैसे ब्रज में जाऊंगा, तिलों का संग पा करके कृष्ण को भूल गए, देखा जो कृष्ण तो संपूर्ण रूप नहीं है, वो मथुरा में तो है ही नहीं, और है तो आंशिक रूप में कला रूप में वहां है, संपूर्ण रूप से यही है, देखा गोपियों के निकट में है। राधा जी कह रही है भाव में विभोर होकर शरीर का कोई होश नहीं, किससे बात कर रही है, देख रही है एक भ्रमर है उससे बात, वो भ्रमर राधा जी के चरणों के साथ चारों तरफ में घूम रहा है, मानो समझता है कि ये कमल, वो समझती है कि ये कह रहा है हमको कृष्ण ने भेजा है, आप उनसे सुलह ना मत कीजिए, आप उन पर मान मत कीजिए, वो निर्दोष हैं, आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। कैसा सुंदर उसने वर्णन किया है, रसिक ही वैद्य है, रसिकों का अतिरिक्त उस चीज को नहीं समझेगा। विशेष करके जब उन्होंने कहा मृगयुग का पंद्रम दव्यधे लुप्त धर्मा, इस श्लोक में तो चरम हद कर दी है, पीरा दस्ता एकदम भूल गई है। गोपियां खोजते खोजते कृष्ण को तन्मय होकर के अपने को समझा कि मैं ही कृष्ण हूँ, किंतु ये वो ब्रह्मवाद नहीं, ये प्रेम का एक विकार है। तो एक छोटी सी लघु कथा यहाँ पर मैं उपस्थित करता हूँ। ब्रज में कोई नवेली अभी दो चार दिन हुए विवाहित होकर के कोई आई, कृष्ण गोचारण करने के लिए सवेरे जा रहे हैं अपने सखाओं के साथ में, चारों तरफ में हल्ला हो गया, ये कृष्ण गोचारण के लिए जा रहे हैं, और की तो बात क्या, बच्चे बूढ़े बूढ़ी बच्चियां लड़कियां किशोरियां विवाहिता अनविवाहिता, यहां तक कि अंधे भी अंधे का हाथ पकड़ करते कृष्ण का ये गोचारण गमन लीला दर्शन करने के लिए चलने लगे। कोई अपने दरवाजे के पास में खड़ी हो गई नवेली, कोई खिड़कियों से झांक रही है, कोई दरवाजे पर तार करके खड़ी हो गई। इस तरह से ब्रज में ऐसा कोई नहीं था जो निकल करके दरवाजे पर ना आ गया हो और कृष्ण के उस मधुर रूप का दर्शन करना था। श्रीमद्भागवत में इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। वही आंखें धन्य है जो कृष्ण को इस समय कृष्ण और बलदेव के साथ में जाते हुए अथवा बलदेव जी के पीछे पीछे जो कृष्ण बंसी वादन कर रहे हैं, इनकी बड़ी सुंदर व्याख्या हमारे मठ में इन्होंने की थी। ये कृष्ण बलदेव नहीं, कृष्ण के पीछे पीछे चलने वाले मधुर बंसी बजाने वाले जो कृष्ण हैं, जो जा रहे हैं हंसते हुए मुख से मुखारविंद से तिरछी नजर से गोपियों की तरफ में वो देखते हुए मुस्कुराते हुए चले जा रहे हैं। ऐसे कृष्ण का जिसने दर्शन नहीं किया उसका जीवन और उनकी आँखें नर होने के बराबर, उनकी आँखें व्यर्थ हैं। गोपियाँ देख रही हैं सभी, नवेली को उसकी सास कर रही है, ऐ देख अभी आज तू मत जाना, तो मैं तो जाऊँगी दर्शन करने के लिए उनका, मत जाना, काला भुजंग है, बड़ा विषधर है, काट देगा कभी बीच नहीं करेगा, मत जाना, खबरदार। मैं किसका बतला रहा हूँ, मन मन अभाव, कैसे मन मन अभाव होता है, इसका एक झांकी देने के लिए। तो वो कह रहे हैं मत जाना, कहिए तो तुम्हारी लड़की जो जा रही है, लड़की जा रही है तो तुम क्यों जाएगी, तुम मत जाना, अरे उसकी बहू भी तो जा रही है। मैं कहती हूँ हमारी बात, मैं परिपक्व हूँ, मैं इस बात को समझती हूँ, कभी बीच नहीं करेगा जीवन भर, नहीं तो मैं तो जाऊँगी, मेरी बात नहीं तुम्हारी, अब तुम क्यों जा रही है बूढ़ी होकर के। किसी तरह से नहीं मानी वो आगे, किंतु बूढ़ी बढ़ गई आगे, कहिए तुम मत जाना, मैं अभी आ रही हूँ, उसके पीछे पीछे ये भी चल गई और दरवाजे पर जा करके खड़ी हो गई। वह ने श्लोक कृष्ण बांसुरी बजाते हुए चले जा रहे थे, सखा लोग चारों तरफ से घिर रहे हैं, बरहा पीरम नटवर बपु कर्ण यो कर्ण जा बिभ्रत बास कनक, वो ठीक वही की प्रतिमूर्ति कृष्ण बड़े ही सुंदर लुभावने रसिक कृष्ण चले जा रहे हैं। आंखें उनकी मानो कुछ खोज रही हैं, किसको खोज रही हैं, कुछ नवेलियों को ही खोज रहे हैं, मानो नजर गई उनकी, देखा उन्होंने और वो तन्मय होकर के वहीं से देख रही है कृष्ण को। कृष्ण ने सोचा जिसकी मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए, सबकी मनोकामना वो कृष्ण पूर्ण करते हैं, बस वहीं से एक बछड़े को बिछका दिया, उसका पूंछ थोड़ा सा मोड़ दिया और सुंदर हंस था बछड़ा कूदता हुआ एकदम ऐसा कृष्ण ने डिरेक्शन उसको दिया जैसे एकदम ठीक दरवाजे के पास में पहुंचा और झट कृष्ण उसके पीछे से ही मानो उसको पकड़ने के लिए जा रहे हैं, बस झट वहां पर पहुंचे। गोपी एकदम तन्मय होकर खड़ी थी, कृष्ण को देख रही थी, कृष्ण ने अपनी बंसुरी दी और उसके चिबुक में थोड़ा सा स्पर्श करा दिया, उसके तरफ में ऐसी मनमोहन रूप से दृष्टि से उसको देखा, वो दृष्टि उसके भीतर में जाकर उसके मन को अपहरण कर दिया और लेकर के साथ ही साथ में कृष्ण उधर से छलांग मारते हुए चले गए, बस गोपी रही, उसका शरीर रहा, मन कृष्ण के साथ में चला, खड़ी की खड़ी रह गई। कृष्ण चले गए, धूल भी उड़ना बंद हो गया, सब लोग जहां तहां अपने अपने घरों में चले गए, घंटों बीत गए, वो दरवाजे पर खड़ी की खड़ी रह गई। साथ में कहा था ना मैंने चढ़ जाएगा भी, चलो चलो चलो, खिलाया शरीर, घर में ले गई, बोल जी इसका मन तो होश में नहीं है, ऐ जाओ घर से कोई मटका ले आओ दही का और समर्थन करो अभी, तो जाओ ले आओ, कहा तो दिया तो मन तो था नहीं, घर में गई और मटके के बदले में सरसों का मटका उठा लाई और दही का वो लेकर के मंथन मंथन और उसी राई को मथने लग गई। दूध है दही है क्या है उसको ये ज्ञान नहीं, क्योंकि चित्त उसका नहीं, मन मना भाव कृष्ण के साथ में, शासन दिया, अरे ये क्या कर रही, इसको दूसरा ऐसा कोई काम दो जो चित्त इसका लौट आए, बस होश में आ जाए। उन्होंने उसको कहा पानी लाओ, तो पानी भर लाओ, एक घड़ा दे दिया उसके ऊपर में, एक घड़ा दे दिया, रस्सी भी मोटी से दे दी और एक छोटा सा बच्चा भी इसकी गोद में दे दिया, जाओ कुआं कुछ दूर कुएं पर गई, बच्चे को उतारा, घड़े को भी उतारा, रस्सी भी निकाली और उसमें फांस बनाया, उसमें बांध करके एक घड़े में और उसको नीचे गिराएगी, पानी भरेगी। मन तो है नहीं, मन मनाभाव है। उसने उस रस्सी को लेकर के उस बच्चे को जो बिठाया था खड़ा समझ करके उसी के गले में देकर के और कसने लगी। गोपी ने कहा, अरे ये देखो 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 क्या करे, अरे अरे ठहरो ठहरो ठहरो, कोई काफी है, इसको भूत लग गया। आप जो जानती हैं इस विषय को, ये कृष्ण की काशी ठहर लेते हैं, ऐसे ही हरते हैं। उन्होंने कृष्ण इसको भूत नहीं लगा, इसको नंद का पूत लगा है, समझ गई वो। इसको कहते हैं मन मनाभाव, न जाने कब तक होश में आई कि नहीं आई। इसके बाद में वर्णन तो नहीं किया है गोपी हमारे गोस्वामी ने, किंतु ये उदाहरण दिया, ये मन मनाभाव। यदि ऐसा मन कोई कृष्ण में चित्त दे दे, ऐसा कोई गुरु मिल जाए, विशेष करके गोपियाँ रूपी गुरु यदि मिल जाए, कहीं ललिता भी शाखा मिल जाए, तो ऐसा संभव। तो गीता का यह चरम जो उपदेश है, मन मनाभाव ये हो सकता है। अर्जुन ने हाथ जोड़ करके, प्रभु ये ऐसा संभव पर नहीं है, ये युद्ध क्षेत्र है, ये कैसे हम ऐसा मन मनाभाव अपने मन को दे देंगे। तो युद्ध आप कहते हैं युद्ध भी करो और हमारा स्मरण भी करो, तो मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ। तो उन्होंने मद भक्तो तब द्वितीय रूप में उन्होंने कहा। अच्छा और थोड़ा सा निकलता है यहाँ पर, हो सवाल है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शन तथा आत्मनिवेदनम, अथवा योग से महम्य हम अनन्न चिंतन तो मांगे जनु जना पर्युपासके तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग से महम्य हम। जो लोग अभी होश तो है, भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करते हैं, तत्वज्ञान भी उनका पहला जो हो गया है वो हो गया है, दूसरा गुह्यतर भी उनका हो गया है, उससे ऊपर उठ गए हैं, गुह्यतम भी हो गया है, अब तब गुह्यतम में आने वाले हैं, अभी हुआ नहीं, अभी भावावस्था तक प्राप्त है। जैसे बिल्ल मंगल का हुआ, बिल्ल मंगल को साधक कहते हैं, उसके नीचे वाले अभी साधक नहीं है, विशेष करके राधा निगा के। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक वैधि भक्ति और एक होती है रागानुगा। चैतन्य महाप्रभु विशेष करके इस रागानुगा प्रेममयी भक्ति को देने के लिए जगत में आए थे, गीता का भी वही उद्देश्य है अंत में, किंतु सूक्त रूप से यहाँ पर वर्णन किया गया। इसलिए यदि जिसका मन ऐसा नहीं हुआ कि हम उनमें कृष्ण में अपने चित्त को दे सकें, तो इतना तो कर सकते हैं कि भगवान का सततम कृतयंतो मांग जे जनो पाद्युपास के, उसमें भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, उनका कथाओं का श्रवण कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, जैसे बिल्लो मंगल, किंतु जैसे बिल्लो मंगल जी ने किया ऐसा नहीं हो तो उसके नीचे और आएंगे। कहते जी कैसे, हम सुनते हैं कि एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था अर्जुन, बहुत दिनों की बात, गीता का अनुशीलन करते थे और गीता के समस्त विषयों पर उपदेशों पर बड़ा उनका बहुत ही श्रद्धा थी, उसके टीकाकार भी हैं गीता के। उन्होंने, अब मैं समाप्त भी करना चाहता हूँ, दो चार पाँच मिनट लगेगा। तो अर्जुन जी जब गीता के श्लोकों की का अर्थ और व्याख्या करते हुए इस श्लोक पर आए, अनन्य चिंतयंतो मां ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम वहम्यहम्। जो लोग सब समय अनन्य चित्त होकर के अपने समस्त सर्वधर्मान प्रत्यजमान एकम शरणम व्रज हो करके स्वरूपतः और सिद्धांततः सब कर्मों को जो मैंने छोड़ दिया, एक होता है कर्मों में आसक्ति छोड़ करके कर्म करें, एक ये त्याग होता है, और एक होता है स्वरूपतः अर्थात आसक्ति और स्वरूपता भी उसको छोड़ दिया, जैसे चैतन्य महाप्रभु इत्यादि सुखदेव गोस्वामी नारद जी ये स्वरूपतः और फलतः दोनों छोड़ दिए हैं। और लोग हैं जिसको उन्होंने निष्काम कर्म इत्यादि किया, तो यहाँ पर कहते हैं यदि कोई व्यक्ति स्वरूपतः ही कर्मों को छोड़ दे तो भी कुछ न कुछ खाने पीने इत्यादि के लिए तो करना पड़ेगा, किंतु उसको भगवत उपासना में बना करके करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं मन मना मद भक्तो, हमारे भक्त कैसा, जैसे अर्जुन जी है कर रहे हैं गीता का, करते करते जब ये श्लोक आया जो अनन्य रूप से हमारी भावना करता है और उसको और कर्मों के लिए समय नहीं मिल पाता है, खाने पीने इत्यादि के लिए योग और क्षेम जो चीज़ नहीं है उसको दे देना आवश्यक, और जो चीज़ें हैं उसकी रक्षा करना ये क्षेम है, मैं स्वयं अपने कंधे पर ढो करके पहुँचा आता हूँ। मैं आज पचासों वर्ष हो गए गीता पढ़ते हुए और भगवान का भजन करते हुए, आज तक ढो करके नहीं लिया, हो सकता है किसी के माध्यम से कोई चीज़ पहुँचा दें, ये तो मैं मान सकता हूँ, ढो करके नहीं लिया। उन्होंने एक लाल काली से स्याही से उस पर उन्होंने काट दिया और काट करके चले गए भिक्षा में। उस दिन दोपहर या तीन पहर तक उनको कुछ भी भिक्षा नहीं मिली। लौट रहे थे घर में तीन प्रहर पर। इसी के बीच में दोपहर में एक छोटा सा सांवलार सलोना पीतांबर का कपड़ा पहने हुए साधारण बालक जैसा एक बंगी पर बंगी कहते हैं कंधे पर रखते हैं, दोनों तरफ में बड़ी बड़ी टोकरियों में चावल दाल आटा घी मैदा बूरा जो सब सामान होना चाहिए सभी सामान दोनों पर भरा हुआ और छोटा सा बालक किशोर 13 साढ़े 13 14 वर्ष का अधिक कभी बड़ा सुकोमल सी अंग पसीने से लथपथ हंसता हुआ दरवाजे पर आया। मैया दरवाजा खोलो, बड़े सुरले कंठ से बोला। उनकी पत्नी ने कहा जी कौन है? मैं पंडित जी का शिष्य हूँ, उन्होंने कुछ सामान भेजा है। तो उसने खोल दिया, एक तो कुछ कपड़े तन ढकने के लिए नहीं थे, ब्राह्मण देवता ही उनके कपड़े पहन करके चले गए, फटाफटा कपड़ा उन्होंने अपना पीताम्बर फेंक दिया उसके ऊपर में और दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने दरवाज़ा खोलने के बाद दिए लेकर के भीतर में पहुँचे, पसीने से एकदम लथपथ, मुख कुछ सूखा हुआ, क्लांत हो गए हैं। अरे बेटा वो पंडित जी कहाँ है? पंडित जी भी उधरी रह गए। बोली जिसे बेटा तू ले जाकर के हमारे घर में दे आ, मैं आ रहा हूँ। तो इतना भार तुम्हारे कंधे पर छोड़ दिया, ये तो बड़े निष्ठुर, आज तक मैं उनको तो निष्ठुर नहीं जानती थी। मैया क्या कहूँ, केवल इतना भार ही नहीं, उन्होंने बुलाया, मेरे आने में कुछ विलम्ब हो गया और विलम्ब होने के नाते मुझ पर बिगड़ गए और अपने नाखूनों से मेरे पीठ में चीर दिया बिगड़ कर। देखा सचमुच में ऐसे मालूम रक्त उद्गम हो रहा, वो लाल एकदम यहाँ से हुआ गया। देखते ही उसके आंखों में आंसू आ गए। बोली इतने निष्ठुर पंडित जी आज आते हैं तो मैं देखती हूँ उनको। इस बच्चे को अपने आधा सामान वो खुद ही ले सकते थे, दूसरे शिष्यों को बुला लेते, सब इस पर छोड़ दिया और इसको भी ऐसा बकोट दिया उन्होंने, नोच लिया। अच्छा तो ठीक है बेटा, आने दो उनको, तुम बैठो, मैं अभी रोटी बनाती हूँ, खा पी करके जाना, ऐसे मत चला जाना, अभी बैठो यहीं। बस साथ साथ में इसको चावल और उसमें ले करके और रसोई बनाने के रसोई घर में गई और इस समय थप थप की आवाज़ हुई सामने। पंडित जी ने कहा दरवाज़ा खोलो, ये कुछ कुर्ती हुई, कुछ बिगड़ती हुई, कुरोस में भरी हुई। पंडित जी को दो चार गली कटी सुनाएंगी। दरवाजे पर पहुंची, दरवाज़ा खोला, पंडित जी आए, उन्होंने उलाना दिया। अरे उस बच्चे के ऊपर में इतना भाग मैंने दे दिया, तुम नहीं ला सकते थे, अपने तो निकले ऐसे ही हाथ घुमाते हुए चले आए और बच्चे पर सब भाग दे दिया और ऊपर से आपने इसी से काट दिया। अरे कौन बच्चा, कहाँ सामान, कहाँ क्या, मुझे कुछ पता नहीं है। अच्छा पता भी नहीं है, अरे बच्चा तो वहीं पर बैठा हुआ है, तो चलो तो जरा बच्चा देखूँ। गया देखा, खोजते ढूंढते 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 कहीं बच्चा नहीं। कहा जरा वो लाना तो गीता। गीता लाया, उनके सामने दिया गया, देखा खोल करके जो वो जो लाल चिन्ह जो स्याही का बना हुआ, तो लाल स्याही भी नहीं है। आंखों से आंसुओं की धारा गिरने लगी और अपने स्त्री के चरणों में पड़ गए। तू इतनी सौभाग्य थी जो उनको देखा, हमको संदेह हो गया था। इस संदेह को दूर करने के लिए ये प्रभु जो गौन भी करते हैं, यदि वैसा कोई भक्त हो तो हमारे लिए करता है ने? तो ऐसा ही हो जाता है। दोनों छुट छुट करते रहेंगे। ये है मद भक्त, भक्ति का ऐसा ही अनुशीलन होना चाहिए। ये गीता का तात्पर्य है। गीता का तात्पर्य कर्म नहीं है, कर्म उस साधारण लोगों के लिए है जो कर्म किए बिना रह नहीं सकते हैं। तो उनको वैदिक कर्म जैसा कि शास्त्रों में बतलाया गया है करते हुए भक्ति करना और उनसे ऊपर उठ हो जाए तत्व ज्ञान हो जाने के बाद में ऐसे अनन्य भक्ति करना चाहिए। अर्जुन ने कहा प्रभु ये हमसे इस युद्ध क्षेत्र में नहीं होगा, हमारे लिए कुछ और सरल करके कहिए। तब उन्होंने कहा मज्जाजी भव, हमारा जजन करो, पूजा अर्चन तो कर दो। प्रभु पूजा अर्चन में तो घी इत्यादि सामान चाहिए, फूल चाहिए, पुष्प चाहिए, ये सब यजन यज्ञ अथवा अर्चन इत्यादि। यहाँ पर अर्चन इत्यादि से तात्पर्य है कोई द्रव्य से लेकर के भगवान का पूजन उनको अर्पण इत्यादि करना है। इस यज्ञ स्थली में धनुष और बाण और ये सब चीज़ें बनी पड़ी हैं, इसमें वैसा भाव मेरे लिए कहाँ से संभव है। प्रभु कुछ और नीचे उतरिए, कुछ मेरे लिए ऐसा करिए जो मैं कर सकूँ। मांग नमस्कुरु, इसमें कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। एक बार भी यदि कृष्ण को प्रणाम कर दिया फिर उसका जन्म नहीं होता। कृष्ण का प्रणाम करने वाला कभी भी जगत में नहीं आ सकता, एक बार भी प्रणाम करते। प्रणाम माने क्या? प्रतिष्ठित रूप से नमन करता है। न माने अहंकार को दूर हुक करके और भगवान के चरण में सर्वस्व समर्पण करना, ये प्रणाम का तात्पर्य है। एक बार भी यदि ऐसा कोई सब प्रणाम कर दिया उसका जीवन सार्थक हो जाए। अथवा कहते हैं कि सब एक अर्थ लीजिए, भगवान को प्रणाम करते हुए, उनका जजन करते हुए, उनमें नौधा भक्ति या चतुर्धा अथवा तीन प्रकार की भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अथवा एक नाम संकीर्तन, ऐसा करते हुए अपने चित्त को भगवान में लगाए और उन कर्मों को भी करें तो भगवान इससे प्रसन्न हो जाते हैं। गीता का यही सर्वोत्तम सार है। यदि हम लोग इनमें से एक को भी या सबको भी सामूहिक रूप में पीकर यदि ग्रहण कर सके, हम लोगों का जीवन सार्थक हो जाएगा, रसमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, फिर लौट करके इस जगत में नहीं आना पड़ेगा। यही आज मैं संक्षेप में अपना वक्तव्य प्रकाश किया। हमारे पूज्य हमारे ये श्रद्धेय स्वामी जी हैं, शास्त्री जी हैं, और हम में से यदि कुछ गलती हुई हो तो आप लोग इसके लिए क्षमा करें। वंशा कल्पति
लोगों की सुविधा और असुविधा को भी देख रहा हूँ, इसलिए आज मैं अपना कुछ विशेष वक्तव्य दूँ ऐसा